ठीक है, रेहान ने बस इतना ही कहा। वो ज्यादा रुका नहीं, मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। नूर ने उसे जाते हुए देखा, फिर हल्के से पुकारा, आप ठीक तो है ना? उसके लहजे में सच्ची फिक्र थी। आखिर रेहान के चाचा की मौत हुई थी, वो बस उसका हाल जानना चाहती थी। रेहान एक पल के लिए रुका, लेकिन बिना उसकी तरफ देखे बोला, हाँ ठीक हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद नूर ने फिर पूछा, ताई अम्मी कब आएंगे? आ जाएंगे, उसने संक्षेप में जवाब दिया और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। नूर वहीं कुछ पल खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पाई हो। फिर धीरे से मुड़ी और वापस अपने कमरे में चली गई। फैजान बाहर खड़ा था, शाम ढल रही थी लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। फोन उसके हाथ में था, वही वॉइस मैसेज बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, नासिर खान चाचा नहीं रहे। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। कोई मुझे बुला नहीं रहा, उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन दिल, दिल तो वहीं अटका हुआ है। उसने आंखें बंद कर लीं, घर का माहौल, लोगों के चेहरे, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। ऐसे वक्त पर इंसान खुद चला जाता है, उसकी आवाज़ भारी हो गई, बुलावा नहीं भी हो तो भी। उसने फ़ोन कसकर पकड़ा, जैसे खुद को रोक रहा हो, काश मैं आ सकता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। वो वहीं खड़ा रहा, दिल घर की तरह भाग रहा था और कदम मजबूरी में यहीं जमे हुए थे। नौकरानी खाना लगाने के बाद रेहान को बुलाने उसके कमरे में गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, भूख नहीं है। नौकरानी वापस आकर नूर से बोली, नूर बीबी, रेहान भाई खाना नहीं खा रहे। नूर कुछ पल चुप रही, उसे तुरंत ख्याल आया, उनके चाचा जान का इंतकाल हुआ है, ऐसे वक्त पर कोई कैसे खा सकता है। उसके दिल में एक नरमी सी आई, ऐसे तो और तबीयत खराब हो जाएगी, उसने धीरे से कहा। वो खुद उठी और रेहान के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा हल्का सा बंद था, नूर ने दस्तक दी, रेहान दरवाज़ा खोलिए। अंदर से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर दरवाज़ा खुला। नूर ने बिना ज़्यादा कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, आप खाना नहीं खा रहे, चलिए खाना खा लीजिए। उसके लहजे में सिर्फ फिक्र थी, न कोई हक जताना, न कोई और मतलब। वो उसे हल्के से खींचते हुए बाहर ले जाने लगी, लेकिन जैसे ही नूर का हाथ उसके हाथ से टकराया, रेहान ठहर सा गया, उसकी सांस एक पल को रुक गई। नूर को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके इस छोटे से स्पर्श ने रेहान के अंदर कितनी हलचल पैदा कर दी है। जिस एहसास को वो इतने दिनों से दबाए हुए था, जिस चाहत को उसने खुद से भी छुपा रखा था, वो जैसे अचानक जाग उठी। रेहान बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ा, जैसे उसके हाथ की पकड़ में आ गया हो। उसकी नज़रें नूर पर टिक गई थीं और दिल अपनी हदें पार करने लगा था। नूर बेखबर थी, वो सिर्फ उसे खाना खिलाना चाहती थी, उसे संभालना चाहती थी। उसे क्या पता था उसका यही एक स्पर्श किसी के अंदर दबे तूफान को जगा देगा। नूर ने चुपचाप उसकी प्लेट में खाना परोसा। मुझे खाना नहीं खाना, रेहान ने धीमे से कहा। ऐसे कैसे हो सकता है, नूर ने हल्के से टोका। आप तकलीफ में हो और मैं आराम से खाना खा लूं, ये ठीक नहीं है। रेहान कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखता रहा। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। नूर की हर साधारण सी बात, हर लहजा उसे कुछ और ही मतलब दे रहा था। वो जो कुछ अपने अंदर दबाकर बैठा था, वो अब जैसे हर पल बाहर आने को बेचैन था। उसकी नज़रों में नूर की एक अलग ही तस्वीर बन चुकी थी, वो तस्वीर जो हकीकत से कहीं दूर थी। शायद मेरी भूख ही मर गई है, रेहान ने नज़रें चुराते हुए कहा। सुबह से वक्त नहीं मिला, हालात ही ऐसे थे। उसने प्लेट नूर के हाथ से ले ली। नूर ने हल्की सी सांस ली। तो अब तो खाना खा लीजिए, अब वक्त है आपके पास। उसका मतलब साफ था, अब जब थोड़ा सुकून मिला है तो खुद का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रेहान ने उसकी बात का बिल्कुल अलग मतलब निकाला। उसे लगा नूर किसी और ही तरफ इशारा कर रही है, जैसे वो इस खाली घर, इस अकेलेपन की बात कर रही हो। तभी सकीना बिस्तर उठाए वहां से गुजरी। ये कहाँ जा रही हो, रेहान ने पूछा। मैं नूर बीबी के कमरे में सोने जा रही हूँ, सकीना ने जवाब दिया, ताई अम्मी ने कहा था। नूर ने बात आगे बढ़ाई, हाँ मुझे डर लग रहा था, घर में कोई नहीं था, अब तो आप आ गए हैं। उसकी आवाज़ में सादगी थी, बस एक सीधी सी बात, लेकिन रेहान के लिए ये शब्द जैसे कुछ और ही बन गए। उसे लगा जैसे नूर उसे अपने कमरे में आने का इशारा दे रही हो। आप खाना खा लीजिए, रेहान ने फिर कहा। रेहान अब भी उसे ही देख रहा था, उसकी नज़रें भारी थीं और खामोशी में कुछ ऐसा था जो नूर समझ नहीं पा रही थी। नूर को क्या पता था, वो बस एक इंसान की फ़िक्र कर रही है, लेकिन सामने बैठा इंसान उसकी हर बात, हर लम्हे को एक अलग ही कहानी बना रहा था। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। सब कुछ जैसे थमसा गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर तूफान अब भी चल रहा था। फैजान ने सबसे पहले रेहाना बेगम को फोन किया। वो जानता था इस घर में अगर कोई सबसे समझदारी से बात कर सकता है तो वो वही है। रेहाना बेगम ने फोन उठाया और हमेशा की तरह नरमी से बात की। मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन आऊंगा, फैजान ने धीमे लहजे में कहा। मैं माहिरा से बात कर लेता हूँ। ठीक है, रेहाना बेगम ने बस इतना कहा। रेहाना बेगम से बात खत्म करते ही फैजान ने तुरंत माहिरा का नंबर मिलाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कॉल उठी। कैसी हो माहिरा? उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। आप कैसी हैं? उसने खुद ही बात संभालते हुए कहा। चाचा जान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। मैं आऊंगा थोड़े दिनों में, फैजान ने कहा। तुम में जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, माहिरा की आवाज अचानक सख्त हो गई। फैजान चुप रह गया। अगर तुम्हें बुलाना होता तो तुम्हें उसी वक्त कॉल किया जाता जब उनकी अंतिम रस्में हो रही थी, उसने बिना रुके कहा। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझे? उसके शब्द सीधे थे और चुभने वाले भी। थोड़ी सी तो खुद की इज्जत रखो और जहां से दूर रहो। माहिरा नहीं चाहती थी कि वो वापस आए। फैजान ने गहरी सांस ली। तुम इस वजह से मुझसे दूर हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं? उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। मैं सच कहता हूं, तुम्हारी सारी शर्मिंदगी दूर कर दूंगा। तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। उसके लहजे में एक जिद थी कुछ साबित करने की। मैं ये चाहती हूं कि तुम कभी वापस मत आओ, माहिरा ने ठंडे स्वर में कहा और बिना एक पल गवाए उसने फोन काट दिया। फोन कटते ही फैजान कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में फोन था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। अरमान से उसकी पहले ही हाथापाई हो चुकी थी, इसलिए उसे फोन करने का कोई मतलब ही नहीं था। अब वो अकेला था। अगली सुबह रेहान बहुत जल्दी मीटिंग के लिए निकल गया था। घर में हल्की सी खामोशी थी। नूर अपने एग्जाम की तैयारी में लगी हुई थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और उसके बारे में क्या सोच रहा था। मीटिंग खत्म होते ही रेहान ने तुरंत ड्राइवर करीम को फोन किया। करीम, तुम नूर को घर छोड़ने के बाद सीधे वेयरहाउस आ जाना, वहां कंटेनर उतर रहा है, तुम्हारी जरूरत है, उसने सख्त लहजे में कहा। करीम ने झिझकते हुए जवाब दिया। साहब, मैं तो नूर बीबी को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा था एग्जाम के बाद। अच्छा, रेहान एक पल को ठहरा जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर उसने तुरंत कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, सीधे गोडाउन पर आ जाओ, कंटेनर का काम ज्यादा जरूरी है, मैं किसी और को भेज देता हूँ नूर को छोड़ने के लिए। करीम के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जी साहब, कहकर उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही रेहान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। और सुनो, उसने दोबारा कॉल मिलाकर कहा, अगर नूर जा रही है तो घर की सारी मुलाजिमाओं को 2 दिन की छुट्टी दे दो।
जी साहब, करीम ने बिना सवाल किए हामी भर दी। उन्हें कह देना जब फैमिली वापस आ जाएगी तब बुला लिया जाएगा। फोन करते ही रेहान कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो उसके इरादों को साफ बयां कर रही थी। उसके दिमाग में अब सब कुछ एक प्लान की तरह सेट हो चुका था। कल रात